पहला राजा अध्याय 16, अध्याय 16 पद 1 और 3। और बाशा के विषय यहोवा का ये वचन हनानी के पुत्र यहू के पास पहुंचा। सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यरोबाम के समान कर दूंगा। इसलिए बाशा का घराना पूरी रीति से साफ कर दिया गया। पद 4 और 5। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये पुस्तकें हमारे पास नहीं है। अध्याय 16 पद 6। निदान बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिरसा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। पद 8 से लेकर 18 तक। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बासा का पुत्र एला तिरसा में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वो तिरसा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिरसा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिमरी नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रतों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला, और उसके स्थान पर राजा बन गया। ये यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। और जब वो राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बाशा के पूरे घराने को मार डाला। वरन उसने ना तो उसके कुटुंबियों और ना उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिमरी ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इसराइल से भी करवा के इसराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, वो क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिमरी तिरसा में राज्य करने लगा। आसा ने 41 वर्ष राज्य किया और जिमरी तिरसा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग फिलिस्तियों के देश गिप्तोन के विरुद्ध डेरे खड़े किए हुए थे। तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिमरी ने राजद्रोही की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इसराइल ने ओमरी नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इसराइल का राजा बनाया। तब ओमरी ने समस्त इसराइल के संग ले गिबतोन को छोड़कर तिरसा को घेर लिया। जब जिमरी ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। उसने कुछ दिन के राज्य के बाद आत्महत्या कर ली थी। तब ओमरी नाम प्रधान सेनापति का राज्य आरंभ हुआ। अध्याय 16 पद 19 और 20। वो उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वो यरोबाम किसी चाल और उसके किए हुए और इसराइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिमरी के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये पुस्तक हमारे पास नहीं है। अध्याय 16 पद 21। तब इसराइली प्रजा के 2 भाग किए गए। इस तरह उत्तरी राज्य में गृह युद्ध हुआ। वे पहले दक्षिण राज्य से पृथक हुए और अब उनके बीच में ही गृह युद्ध छिड़ गया। अध्याय 16 पद 21 से लेकर 29 तक। प्रजा के आधे लोग तो तिबनी नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे उमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग उमरी के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिबनी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिबनी मारा गया और उमरी राजा बन गया। यहूदा के राजा आशा के 31वें वर्ष में उमरी इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिरसा में राज्य किया और उसने शमेर से शमरोन पहाड़ को 2 किकार चांदी से मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शमेर के नाम पर शोमरोन रखा। और उमरी ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सभी से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वो नाबाद के पुत्र यरोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इसराइल से करवाए थे, जिसके कारण इसराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। उमरी के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, ये सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान उमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र आहाब इसराइल पर राज्य करने लगा। सच तो ये है, उन लोगों को कोई अच्छा राजा नहीं मिल रहा था। अध्याय 16 पद 29 से लेकर 34 तक। और इसराइल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा और उमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नाबाद के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया था, वरन उसने उन सभी इसराइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। उसके दिनों में बेतेल वासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नेव डाली तब उसका जेठा पुत्र अभिराम मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। हम यहोशू की पुस्तक में देखते हैं कि जब यहोशू ने कनान की विजय यात्रा में पहला शहर यरीहो को नष्ट किया था, यहोशू 6:26 पद, यहोशू ने इसराइलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो उसकी नेव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। इसलिए यहोशू ने कहा जो इस शहर को दोबारा बनाए वो शापित हो। इसकी नेव डालने पर उसका पहला पुत्र की मृत्यु होगी और इसके दरवाजे लगाने पर उसका सबसे छोटा पुत्र मर जाएगा। यहोशू ने ये भविष्यवाणी करीब 1451 ईसा पूर्व में की थी और करीब 925 ईसा पूर्व बेतेल वासी हियाल ने यरीहो को पुनः बनाया। यहोशू की भविष्यवाणी करीब 500 वर्ष बाद पूरी हुई। इस तरह परमेश्वर की विस्मयकारी भविष्यवाणी पूरी हुई। ओम्री ने समरिया को पुनः स्थापित किया और उसके पुत्र आहाब ने दुष्ट राजा का नाम कमाया। उसने समरिया को उत्तरी राज्य की राजधानी बनाया। समरिया के खंडर अवशेष देखने वाली चीजें हैं। आप ऊपर जाकर उस स्थान को देख सकते हैं जहां कभी समरिया शहर और आहाब का महल था। वहां बहुत से अवशेष भी हैं जो रोमियो द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि बाद में वो रोमियो का एक शहर बना। परंतु समरिया शहर के अवशेष ओम्री और आहाब के समय से अब भी है। उनके महल के अवशेष समरिया में अब भी देखे जा सकते हैं। जब आप वहां जाओ तो उनकी दुष्टता, सब प्रकार का छल कपट और लहू बहाना आदि का इतिहास सुनना एक विस्मित करने वाला अनुभव होगा। वहां दुष्टता और छल कपट भरा था। समरिया की घेराबंदी के बारे में हम दूसरा राजा पुस्तक में पढ़ेंगे। जब समरिया को असीरिया के द्वारा घेरा जा रहा था, तब कैसी कैसी अचंभित करने वाली बातें उस समय हुई। परंतु ये रोचक है कि समरिया के अवशेष आज भी वहां है। वास्तव में पुराने नियम के समय की पवित्र भूमि के कुछ अवशेष उस शहर में और समरिया के आसपास सुरक्षित रखे गए हैं। और अब परमेश्वर आपके साथ रहे और आपकी निगरानी करे। आपका आंतरिक मनुष्य उसकी पवित्र आत्मा से बल प्राप्त करे और आप पवित्र आत्मा की समझ से परमेश्वर के संपूर्ण प्रेम को जाने कि वो आपसे कैसा प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम की पूर्ण गहराई को आप समझे, वो आपका ध्यान रखे और आप उसे बल और सामर्थ पाते जाओ।